भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, नहीं कमी होगी।
ओम शांति। यूरोप के एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक विचारक मनीषी बर्ट्रैंड रसेल ने एक बहुत सुंदर कथा का वर्णन किया है। इस लेखक का जन्म इंग्लैंड में हुआ, वहीं पर कार्य किया और अपने बहुत सारे बहुमूल्य विचारों से फिलॉसफी दर्शन शास्त्र को भरपूर किया। उसने लिखा है, लंदन का एक आर्च बिशप प्रमुख पादरी एक रात स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है कि उसकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, परंतु यह द्वार इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है। उसने तो सोचा था मेरे जैसी पुण्य आत्मा जिसने इतनों का कल्याण किया है, मेरे स्वागत के लिए तो स्वयं भगवान देवदूत और बाकी सारे फरिश्ते एंजल्स वहां खड़े रहेंगे, पर ये क्या दरवाजा बंद है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 3 दिन तक खटखट खटखट करते रहा, कोई है कोई है कोई है, स्वागत नहीं तो कम से कम कोई देखे तो सही कि मैं आया हूं। 3 दिन के बाद एक ऊपर से खिड़की खुलती है, वहां से एक व्यक्ति देखता है कौन है। तो ये बिशप कहता है, ये पादरी कहता है, आप कौन हो? तो वो कहता है, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, सेंट पीटर। पश्चिम जगत में जो स्वर्ग है उसका द्वारपाल जो होता है वो सेंट पीटर होता है, तो उसकी भी 1000 आंखें दिखाते हैं। तो ये पादरी कहता है, मैं आया हूं। सेंट पीटर पूछता है, तुम कौन? वो कहता है, आर्च बिशप, पादरियों में जो प्रमुख है वो, और वो भी लंदन का। वो सेंट पीटर कहता है, ये पादरी क्या होता है, और दूसरी बात ये लंदन किस वस्तु का नाम है। उसे आश्चर्य होता है, इसे लंदन पता नहीं, इस संपूर्ण धरती पर सबसे सुंदर स्थान लंदन है, क्योंकि वो लंदन का था। तो पीटर कहता है, तुम मुझे फिर कंफ्यूज कर रहे हो, अब ये धरती क्या है? वो कहता है, धरती पता नहीं, सबसे सुंदर ग्रह। सेंट पीटर कहता है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, क्योंकि इतनी सारी धरती है, उसमें से कौन सी धरती की, उसका नंबर क्या है? वो कहता है, ये जो पूरा सौर मंडल है, गैलेक्सी मंदाकिनी, उसमें सबसे सुंदर जो ग्रह है वो धरती है। सेंट पीटर कहता है, तुम मुझे फिर कंफ्यूज कर रहे हो, अब ये सौर मंडल कौन सा, उसकी उसका इंडेक्स नंबर क्या है, क्योंकि इतनी सारे सौर मंडल है, उसमें से कौन सा? वो बिशप कहता है, ये सब जाने दो, इतना समझ लो कि मैं वो हूं जो जीसस क्राइस्ट से सबसे ज्यादा प्यार करता है। सेंट पीटर कहता है, अब ये जीसस कौन है, क्योंकि मैं तो यहां कब से रखवाली कर रहा हूं और भगवान को तो मैंने अब तक देखा नहीं, मैं तो द्वारपाल हूं, भगवान तो बहुत पीछे है। वो पादरी तो सोचता है, मेरा कितना अवभगत मेरी होगी, क्योंकि मैं इतनी पुण्य आत्मा स्वर्ग के द्वार पर आया हूं और यहां तो लोगों को धरती और सौर मंडल कुछ भी पता नहीं। और अचानक उसकी आंख खुलती है, पसीना पसीना, और सोचता है, मैं तो सोचता था मैं स्वर्ग जाऊंगा, पर वहां तो मुझे कोई जानता तक नहीं, इस धरती तक को नहीं जानती, वहां तो कितना कठिन है वहां जाना, और मैं तो मिथ्या अहंकार कर रहा था, और कितने मेरे पुण्य है और कितनी मेरी सेवाएं है और कितना मेरा प्रभु प्यार है, मैं तो उस उच्च पद का अधिकारी था, पर वहां पहुंचने के बाद तो क्या हाल हुआ, बेहाल हुआ। इस संसार के लगभग सभी धर्मों में स्वर्ग की परिकल्पना है, एक ऐसा जगत, एक ऐसा लोक, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जमीन, एक ऐसी भूमि जहां सब कुछ आदर्श है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है। भारत ने उसे मोक्ष कहा, हिंदू धर्म ने, किसी ने स्वर्ग, किसी ने पैराडाइज, किसी ने जन्नत, किसी ने बहिष्ठ। मिस्र की सभ्यता में टेप जेपी कहा जाता है, वहां मान्यता है जब संपूर्ण पहले, सबसे पहले सृष्टि के अनादि काल में धरती पर केवल पानी था, फिर ऊपर से कुछ अंडे आए, उसमें से देवताएं प्रकट हुए और उन देवताओं ने फिर धरती का निर्माण किया और वो देवता यहीं बसने लगे। द फर्स्ट टाइम टेप जेपी या जेप टेपी, अलग अलग नाम है, स्पेन में कहते हैं एल्डोराडो। ऐसा एक राज्य था, ऐसा एक किंगडम था कभी, जहां पर दिव्यता थी धरती पर। हर धर्म ने ऐसे एक स्थान को माना है, और भारत में तो बहुत सी मान्यताएं, स्वर्ग कैसा होगा, स्वर्ग में क्या होगा, स्वर्ग में कौन निवास करेंगे, कितने देवी देवताएं होंगे, और ढेर सारी बातें हैं। सप्तलोक कहे गए हैं, ऊपर सप्तलोक है, नीचे सात लोक है, उन सप्तलोकों में एक लोक स्वर्ग है। तो स्वर्ग वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वैसे तो सात वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, परंतु उन सातों वंडर ऑफ द वर्ल्ड में स्वर्ग का कहीं नाम नहीं, क्योंकि स्वर्ग कब था, स्वर्ग कहां था, उसमें कौन रहते थे, उसमें क्या था, किसी को कुछ पता नहीं। सभी ने कहा है स्वर्ग कहीं दूर आसमान में है, आकाश में कहीं और। कोई कहते हैं एक ही बार वहां जाना होता है जन्नत, एक ही जीवन है, लीनियर टाइम है, परंतु किसी ना किसी रूप से हर धर्म ने माना है। यहूदी धर्म ने माना है, क्रिश्चियन धर्म ने माना है, इस्लाम ने माना है, तीन मुख्य धर्म। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी स्वर्ग लोक की, उसी देव लोक की, उसी स्वर्ग की, उसी बहिष्ट की, उसी ब्रह्मा के दिन की, उसी राम राज्य की, उसी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की, जिसके लिए रोज मुरलियों में ढेर सी बातें आती है। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, एक आंख में दो ही ठिकाने, एक वैकुंठ, एक दूसरा दुनिया निराकारी। वो वैकुंठ, वह राम राज्य, वह कृष्णपुरी, वह लक्ष्मीपुरी, नारायणपुरी, वह सृष्टि का आदिकाल, वह सृष्टि का दिन क्या था, कैसा था, कौन वहां थे, और अब हमें क्या करना है। ऐसी वो कौन सी धारणाएं हमें धारण करनी है जिससे हम उस लोक में जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भगवान पहली बार इस धरती पर उतरे, सबसे पहली बार इस धरती पर अवतरित हुए 5000 साल के बाद, ढेर सारी आत्माओं ने तुरंत पवित्रता को धारण कर लिया, जबकि यह सृष्टि विकारी थी, जबकि यह सृष्टि अपवित्र थी, पतित थी, रौरव नरक था, कुंभी पाक नरक था, विषय वैतरणी नदी थी, जहां विकार और वासनाएं हवाओं में थी, जहां आत्माएं इतनी दुखी, पतित, विकारी। आज सुबह की मुरली, आदि मध्य अंत दुख जहां था, ऐसी विकारी सृष्टि पर भगवान आए और भगवान ने कह दिया योगी बनो और पवित्र बनो। और किस आधार से उन सभी आत्माओं ने तुरंत पवित्रता को धारण कर लिया? क्योंकि भगवान ने आकर एक ऐसी बात कह दी जो आज तक किसी धर्म स्थापक ने नहीं कही थी, किसी तीर्थंकर ने, किसी योगी ने, किसी महात्मा ने, किसी शंकराचार्य ने, किसी अवतार ने, किसी इनकारनेशन ने, किसी बुद्ध ने, किसी इमाम ने, किसी धर्म स्थापक धर्म गुरु ने नहीं कह दी। ऐसी एक बात कह दी, और वो बात सुनते ही वो सारी दादियां जो छोटी छोटी थी, वो सारे भाई बहने उस समय जो थे, उन्होंने तुरंत पवित्रता धारण कर ली और उस पवित्रता के लिए सब कुछ सहन करने के लिए राजी हो गए। और वो बात थी, तुम देवता थे। ये बात कहीं पर भी नहीं है। हाँ, देवता थे पर तुम ही थे, ये नहीं है। और देवता संपूर्ण पवित्र थे। अपने उन संस्कारों को अब कैच करो। क्या यह संभव है कि मैं कुछ था और वो मेरे संस्कार थे और बीच में बहुत कुछ हो गया और अब मैं यहां हूं एकदम नीचे? क्या उन संस्कारों का आह्वान किया जा सकता है? क्या उन संस्कारों को हम फिर से खींच सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम ही वो थे, तत्वमसी तुम ही वो थे। तो आज हम उस स्वर्गलोक की सैर करेंगे। दो अव्यक्त वाणियां हैं मुख्य रूप से, जिसमें बाबा ने संपूर्ण स्वर्ग का वर्णन किया है, वो आप जाकर पढ़ सकते हैं। उनका वर्णन इस क्लास में हम दोबारा पूरी रीति से नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे। 2 जनवरी 1980 की अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने स्वर्ग कैसा होगा, क्या वो खाएंगे, क्या वो पिएंगे, कैसे वो रहेंगे, कैसी वहां की व्यवस्था होगी, क्या कुछ वहां होगा, उस सब का वर्णन उस मुरली में है। और एक दूसरी मुरली है 7 जनवरी 1980, एक 2 तारीख की, एक 7 तारीख की, जनवरी मास की, उसमें वर्णन है कि अब संगम युग और वो आने वाला सतयुग, इसमें संगम युग कैसा श्रेष्ठ है। तो वो जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है उसमें हमें जाना है। जहां हमें जाना है वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट चाहिए। दो मार्ग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। एक है निगेटिव मार्ग, थोड़ा सा वैराग वाला, ये संसार से वैराग, यह नकारात्मकता भाव उत्पन्न करना, तुम्हें घृणा आनी चाहिए, यह छीछी संसार है, विकारी संसार है, यहां पाने योग्य कुछ भी नहीं है, दुख ही दुख है यहां पर, दुखों के पहाड़ गिरने वाले, अब के तुम्हारे दुख तो कुछ भी नहीं, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे, मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी, कौन किसके लिए रोएगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ स्वप्नमय है, सब कुछ स्वप्नव्रत है, माया भी संसार है, इससे कैसी यारी कैसी दोस्ती। एक तो ये मार्ग है, इस देह से क्या प्यार, भिखारी पतित, मात पिता के भ्रष्टाचार से उत्पन्न यह देह, काम वासना का प्रतीक यह देह, इससे क्या प्यार, दलदल है देह, इससे क्या प्यार। नफरत आनी चाहिए तुम्हें इस देह से, इसके सुखों से, कैसा इसमें सौंदर्य, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। एक ये मार्ग जो वैराग दिलाएगा संसार से, पर एक दूसरा भी मार्ग है, किसी और दुनिया में जाना है, उस दुनिया का ऐसा चिंतन, उस दुनिया का ऐसा मनन, उस दुनिया का अनुभव, उस दुनिया में ही रहना, तो ये जो पुरानी दुनिया है ये छूट जाएगी। छोटा बच्चा, दो लड्डू दिए गए, एक छोटा एक बड़ा, कौन सा लेगा, बड़ा। चिंतन नहीं किया ये छोटा कितना छोटा है, बहुत खराब है छोटा, अच्छा नहीं है छोटा। वैराग स्वतः आ गया, क्योंकि जो मिला है वो विराट है, वो बड़ा है, वो श्रेष्ठ है, वो उत्तम है। जैसे ही बड़ा मिल जाता है छोटा छूट जाता है। स्वर्ग धाम, बाप का वर्षा स्वर्ग है, हेवन है, पैराडाइज, लॉस्ट पैराडाइज रिगेन्ड। तो उस लोक की ऐसी हम आज 21 बातें देखेंगे जो उस लोक की है, जो उस दुनिया की है। 21 के साथ में और बहुत सारी जुड़ जाएगी, उसमें एडिशन करते जाना हो, पर उन 21 बातों के लिए, उस 21 जन्म की राजाई के लिए यहां 21 कौन सी धारणाएं चाहिए, साथ साथ इस पर भी प्रकाश डालेंगे। जब ये बातें होगी तब वो होगा। तो स्वर्गलोक, क्या क्या नाम दिए, पहले नाम बताओ, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 100 नाम बताओ, लिखना बाद में, अभी तो कुछ बता दो। परिस्थान, देवताओं की दुनिया, बहिष्ट, अमरपुरी, अमर नगरी, कृष्णपुरी, लक्ष्मी नारायणपुरी, हाँ, बाग, गार्डन ऑफ अल्लाह, और जीवन मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति, और विष्णुपुरी, और सुखधाम, शिवालय, और वैकुंठ, और जन्नत, और सतयुग, और गोल्डन एज, और पैराडाइज, और स्वर्ण युग, और ब्रह्मा का दिन, और भगवान की बनाई हुई तो सारी दुनिया है, भगवान की बनाई हुई सबसे पहली और सुंदर दुनिया देव नगरी, और शिव बाबा का क्या, राम राज्य, ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी, और जन्नत, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण पावन दुनिया, हेवन, बहिष्ट, जन्नत, और नई दुनिया, नई दिल्ली, और शिवालय सिटी ऑफ गॉड किंगडम ऑफ गॉड इंद्रप्रस्थ और हो गया अल्लाह का बगीचा हो गया, जो हो गया वो नहीं बोलो, ईश्वरीय जादू नगरी ह्यूमन गुलदस्ता के गुलशन और गार्डन ऑफ एडन और सतयुग और देवी राजस्थान और देवलोक और अशोक वाटिका और सोने की दुनिया, सोने की दुनिया और सोने की दुनिया और सोने का भारत, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया और ना दैवी साम्राज्य, दैवी कम्युनिटी, स्वर्णिम युग, कमिंग युग और डेटी वर्ल्ड और तो ऐसे ढेर सारे नाम हैं। तो अब हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा, पहले तो देव रूप अपना हर एक धारण कर ले मन ही मन, द्वार है बहुत बड़ा वो खुल गया और हमने अंदर प्रवेश किया। सारी स्मृतियों को जगाना है, देव स्मृतियों को, पवित्रता की स्मृतियों को, देव संस्कारों को, देव लक्ष्मी नारायण जैसे दिखते ऐसे पवित्र ऐसे पावन हम हैं, हम थे हम बनेंगे, यह स्मृतियां। तो विकारी ख्याल, विकारी आकर्षण, यह संसार की स्मृतियां सब कुछ विलीन हो जाएंगे, सब कुछ खो जाएंगे। देव स्मृतियों को जागरण का जागरण करना है अपने अंदर। जैसे ही वह स्मृति आ जाएगी अपने आप सब कुछ बदलेगा जीवन में, घर ही स्वर्गलोक बन जाएगा, इंद्रपुरी बन जाएगा। तो मनसा से उधर प्रवेश करना है। चित्र दिख रहा है स्वर्ग का ऊपर इधर, ठीक है। सबसे पहली बात एडमिनिस्ट्रेशन, स्वर्ग का प्रशासन कैसा होगा? स्वर्ग का प्रशासन सतो प्रधान, दिव्य, करेक्ट, परफेक्ट। लक्ष्मी नारायण का साम्राज्य होगा, एक छत्र साम्राज्य होगा, अखंड साम्राज्य होगा, निष्कंटक साम्राज्य होगा, भारत केवल होगा और कुछ भी नहीं होगा। बाकी सारे स्थान में क्या करोगे तुम? जाकर पिकनिक करोगे, जाकर वहां का जो प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दरबार होगा, परफेक्ट होगा। किसी वजीर की आवश्यकता नहीं, किसी पीए की आवश्यकता नहीं, किसी अमात्य किसी मंत्री की आवश्यकता नहीं। ऐसा वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, प्रबंधन, प्रशासन, राजतंत्र, राजनीति वहां की जो होगी परफेक्ट होगी। और ऐसा राजतंत्र जो सबसे पहली चीज है वहां की, यदि हमें उस राजतंत्र में, उस प्रशासन में, उस एडमिनिस्ट्रेशन में चलना है, तो यहां संगम पर खुद को एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सीखना होगा। अव्यक्त वाणी है बाप दादा की, 1 अप्रैल 1992, जिसने स्वयं को चलाना नहीं सीखा वो स्वर्ग के राज्य को क्या चलाएगा? जिसने स्वयं की स्थिति को चलाना नहीं सीखा, स्वयं के शरीर को चलाना नहीं सीखा, वो राज्य को क्या चलाएगा? बाप दादा के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, यदि कोई अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ता है तो बाप दादा उसे ज्ञानी योगी आत्मा नहीं कर कहते। अपने शरीर को भी समझो, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को, अपने मन को, जिसको चलाना नहीं आता है वो कहां से स्वर्ग का राज्य चलाएगा? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, स्व नियंत्रण जिसने नहीं सीखा, स्व अनुशासन जिसने नहीं सीखा, वो क्या उस राज्य में आएगा जहां पर हाईएस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, हाईएस्ट पॉलिटिकल प्योरेस्ट पॉलिटिकल साइंस है, वहां का राजतंत्र सर्वोच्च है, ऑनेस्टी है वहां पर, सत्यता है वहां पर, ऐसा पवित्र राज्य शासन जहां है उसके लिए संगम की धारणा है स्व प्रबंधन। जिसने स्व को प्रबंधन करना नहीं सीखा वो राज्य को नहीं चला पाएंगे, वो कला, वो आर्ट, वो हैंडलिंग पावर अब डेवलप करनी है, खुद को सबसे पहले चलाना और दूसरा संगठन में जो साथी है, यदि हमारी कोई ऐसा पोस्ट है जिम्मेवारी का कि जिसमें हमें दूसरों को साथ लेकर चलना होता है, किस ढंग से हम चला रहे हैं, वहां पर जो लक्ष्मी नारायण है वो प्रजा को किस रूप से देखते हैं, स्नेह का बंधन है, प्रजा को ये नहीं लगता ये हमारे मालिक है, ऐसा नहीं लगता, ये भाव नहीं होता है, हम गुलाम है ये भाव नहीं होता है, जैसे वो माता पिता है उनका भाव है वासुदेव कुटुंबकम का, एक सम्राट और एक साम्राज्ञी दोनों का भाव है, हम माता पिता है प्रजा के, ये ऐसा प्रबंधन स्व का और दूसरों का। जब ऐसा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जब ऐसी लाइफस्टाइल होगी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ही उस दुनिया में जाकर, उस बहिष्ट में जाकर हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा है ब्यूटी। सबसे सुंदर दुनिया इस संसार में यदि कोई है तो वो स्वर्ग, उससे सुंदर और कुछ नहीं, सब कुछ सुंदर है वहां पर, शरीर सुंदर, आत्मा सुंदर, प्रकृति सुंदर, सब कुछ सुंदरतम है वहां पर। उस सौंदर्य को यदि हमें पाना है तो यहां हमें एक सौंदर्य अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सौंदर्य है संपूर्ण प्यूरिटी का। यदि एक विचार भी विकार का है तो सफेद रजिस्टर पर काला दाग है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, संकल्प में भी यदि, स्वप्न में भी यदि इम्प्यूरिटी आती है तो उससे अब तक के किए हुए पुण्य भस्म होंगे, रजिस्टर पर काला दाग लगेगा, अब तक की हुई कमाई समाप्त होगी, और बाप दादा इस संकल्प से देह को टच करने को, नजर से देह को टच करने को महा महा महापाप कहते हैं। ऐसी प्यूरिटी अपने अंदर धारण करनी है। जो सभी इस भट्टी में आए हैं तो मधुबन से फिर से संपूर्ण प्यूरिटी का संकल्प और प्रतिज्ञा फिर से करके जानी है। तो उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए यहां सुंदर बनना पड़ेगा। सौंदर्य शरीर का नहीं, आत्मा का है। जो आत्मा जितनी सुंदर, जितनी प्योर, उतनी भगवान को पसंद है, जिसमें इम्प्यूरिटी है वो उसे प्रिय नहीं। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठ जाएंगे, स्वयं को देखेंगे उस देवलोक में और संकल्प करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकार, 16 कलाओं से युक्त सत्वप्रधान, देव संस्कारों से युक्त, देव संस्कृति में पला बड़ा पल रहा देवता हूं, देवी हूं। तीसरा, संस्कृति कल्चर, उस संस्कृति में, उस देव संस्कृति में प्रवेश करने के लिए देवताई संस्कार अभी धारण करने पड़ेंगे। रॉयल चलन, साधारणता ना हो, ऐसी हंसी मजाक ना हो। कुछ दिन पहले वरदान आया था कि लोग कहे ये बोलते तो बहुत अच्छे हैं, परंतु क्या ज्यादा बोलते हैं, ये हंसी मजाक तो अच्छी करते परंतु बोलते ज्यादा है, वरदान में था। संस्कारों को प्यूरिफाई करना है, देवताई बनाना है, रॉयल, आर्गुमेंट करने वाले, डिबेट करने वाले, जोर से बोलने वाले, झगड़ा करने वाले, दुख देने वाले संस्कार देवताई संस्कार नहीं, जमा करने वाले लेवता के संस्कार देवताई संस्कार नहीं है, देने के संस्कार, उदारता के संस्कार, महानता के संस्कार, ऐसे संस्कार जब होंगे तब उस देव संस्कृति में हम प्रवेश करेंगे। ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बी फॉर ब्यूटी, सी फॉर कल्चर, डी फॉर डांस। उस दुनिया में देवताओं का मनोरंजन क्या होगा? डांस। वहां देवताएं क्या पढ़ेंगे? डांस कला, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला। उनकी जो पढ़ाई होगी उसमें एक होगा डांस। वहां यदि डांस करना है तो यहां मन में क्या होना चाहिए? ज्ञान डांस। कुछ दिन पहले मुरली में था, बाप तिलक उनको लगाते हैं जो ज्ञान का चंदन घिसते हैं, जो पवित्र है, और तीसरा जो श्रीमत पर है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, रघुवीर सबको तिलक नहीं देंगे, जो ज्ञान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ज्ञान डांस जिनके मन में चलती रहती है, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन निरंतर चलते रहता है। आज बाबा ने मुरली में ये क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वो क्यों कहा, आज सुबह का गौर करो, मैं जो सुनाता हूं वो राइट है, जो दुनिया सुनाती है वो राइट है, जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जिनके मन में यहां ज्ञान डांस चलेगी वो देवता बनकर सतयुग में देवयुग में डांस करेंगे। अगला है एजुकेशन सिस्टम। वहां पर देवताएं क्या क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। पहली जनरेशन जो है देवताओं की वो नहीं पढ़ेगी, उसके बाद की जो जनरेशन है वो पढ़ेंगे कि हमारे जो माता पिता या पूर्वज थे वो कितने महान शासक थे। ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ये देखने के लिए कहां जाना है पिकनिक के लिए, कौन सा स्थान अच्छा है। नृत्य कला होगी, गायन कला होगा, चित्र कला। वहां का जो पढ़ाई होगी वो बोझ वाली नहीं होगी, दुखी करने वाली नहीं होगी, हल्की होगी, खेल खेल में होगी, सहज होगी। तो मुरली कितनी बार पढ़नी है सुबह की मुरली से? 5 से 6 बार, परंतु सहज हो, दुखी होकर नहीं, उदास होकर नहीं, बोझ होकर नहीं कि बाबा ने कहा है पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती, वैसे नहीं, बहुत खुशी से, आनंद से, झूमते हुए, गाते हुए। अरे किसने लिखा है? प्रभु पाती है, माशुक आया है संसार में, माशुक आशिक के पत्र छुप छुप के पढ़ते हैं, बाथरूम में जा जा के पढ़ते हैं, कोई देख ना ले, तो भगवान पत्र लिख रहा है। तो ये पढ़ाई भी कैसी हो, इतनी हल्की हमको लगे, ज्ञान का कोई भार नहीं होता। सबसे हल्की चीज इस संसार में यदि कुछ है तो वो भार ज्ञान है, यदि भार लग रहा है तो शायद हमने उसे नहीं समझा है, नहीं जाना है। ज्ञान अर्थात समझ, उसी मुरली में 92 की बाबा ने कहा है ज्ञान अर्थात समझ, अपनी स्थिति की समझ, अपने शरीर की समझ। यदि बार बार गलती होती है तो बाप दादा उसे योगी ज्ञानी नहीं कहते, क्योंकि समझ नहीं पा रहा है। आत्माओं की समझ, अपने इर्द गिर्द रहने वाले पत्तों की समझ, उनके संस्कारों की समझ। यदि कोई बार बार डिस्टर्ब होता है दूसरों के वजह से और दोष उन पर लगाता है, अर्थात उसने उन दूसरी आत्माओं को नहीं समझा है, मनोविज्ञान को नहीं समझा है, पुरुष अहंकार और स्त्री अहंकार की स्टडी नहीं की है, कैसे ऑपरेट करता है साइकोलॉजी, तो समझना है, ये ज्ञान है। तो यहां की एजुकेशन सिस्टम भी कैसी हो जाए? हल्की हो जाए, खेल खेल वाली हो जाए। उसके बाद है उधर परिवार, फैमिली। वहां पर रॉयल फैमिली होगी, एक होगी प्रजा, एक होगा साहूकार। साहूकार, साहूकार प्रजा और एक दूसरी प्रजा, साधारण प्रजा। रॉयल फैमिली, राजा, बहुत बड़ी फैमिली। सभी के बीच में प्यार होगा, क्या होगा? प्रेम के धागे से सभी बंधे हुए होंगे, कभी वहां झगड़ा नहीं होगा। तो इस परिवार में भी क्या होना चाहिए?
ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही माधुर्य, ऐसी ही मधुरता। यदि यहाँ संबंधों में, परिवार में कड़वाहट है, मनोमालिन्य है, झगड़ा है, तो हम देवता कैसे बनेंगे और कैसे उस देवलोक में जाएंगे? हमें उस लोक में जाने के लिए उस परिवार की नींव, ये परिवार है। एक परिवार में कितने सदस्य होंगे उधर? चार। पहले बच्चे का जन्म कब होगा? जब माँ कितने वर्ष की होगी? 75 ईयर्स, तब पहला बच्चा होगा। उसके 10 साल के बाद दूसरा बच्चा, पहला मेल दूसरा फीमेल, चार लोग होंगे। ज्यादा संबंध नहीं होंगे, पॉपुलेशन बहुत कम होगी, सतो प्रधान होंगे सभी। जन्म कैसे होगा? योग बल से होगा। पावर इतनी ज्यादा होगी, दृष्टि देंगे केवल एक दूसरे को, संकल्पों में इतनी पावर होगी। और ऐसे संकल्प से जिनका जन्म होगा, योग बल से जिनका जन्म होगा, वो कितने प्योर होंगे बच्चे। उम्र 150, ये सारा वर्णन यहां वहां कुछ दादियों के संदेशों में अलग अलग जगह पर आया है थोड़ा थोड़ा। तो परिवार, तो यहां पर भी परिवार, यहां तो विशाल परिवार है, बेहद का परिवार है, ब्राह्मण परिवार। इस परिवार में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जैसे हमें अगर उस परिवार में जाना है तो। उसके बाद है जी, गीत और संगीत। उधर गीत और संगीत कौन सा होगा? बाबा ने मुरली में कहा है 2 तारीख की, जनवरी मास 1980, वहां तुमको कौन उठाएगा और यहाँ कौन उठाते हैं? वहां तुमको प्रकृति उठाती है, यहाँ तुमको प्रकृति का पति, प्रकृति का मालिक उठाता है। वहां तुम एक, वहां तुम विश्वनाथ बनते हो, यहाँ तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो। यहाँ वहां तुम 2 नेत्री बनते हो, यहाँ तुम त्रिनेत्री बनते हो। वहां तुमको दासियों के गोद में पालना होती है, यहाँ तुम्हारी भगवान पालना करते हैं। वहां तुम जाकर निद्रा लोक में सो जाते हो, यहाँ तुम बाप के साथ सूक्ष्म वतन में जाते हो। वहां तुम पुष्पक विमान में घूमते हो, यहाँ तुम बुद्धि रूपी प्लेन में तीनों लोक की सैर करते हो। यहाँ वहां, यहाँ तुम त्रिलोकीनाथ हो, वहां एक लोकनाथ। वहां पर गदेलों में सोते हो, यहाँ तुम बाप की गोद में सोते हो। यहाँ वरदानी हो, विश्व कल्याणकारी हो, वहां विश्व राज्य अधिकारी हो, यहाँ स्वराज्य अधिकारी हो। ये अंतर है दोनों में। तो वहां पर गीत संगीत कौन सा होता है? गीत संगीत हर कोई प्ले कर सकता है, वाद्य पर हाथ रखा और बजना चालू। म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अलग से, अपने आप ही सभी को सिखाए। और जो भी पंछी गाएंगे, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होगी म्यूजिक सिस्टम की वहां पे, जो हवा चलेगी, पत्ते हिलेंगे, उससे सुंदर सुंदर पशु और पक्षी भी अलग अलग प्रकार के पंछी होंगे, कुछ गाने वाले, कुछ नाचने वाले, कुछ घर के अंदर रहने वाले, महल के अंदर, कुछ महल के इर्द गिर्द, कुछ जंगल में, कुछ कोई दूर कहीं और। उसका भी वर्णन, एक एक पंछी होगा, उसके भी अलग अलग डिजाइन होगी, उसको भी क्या होगा, उसके भी श्रृंगार होगा। पहाड़िया जो होगी वो भी अलग अलग डिजाइन की पहाड़िया होगी। पुष्पक विमान होंगे वो भी अलग अलग डिजाइन के होंगे, उसमें भी किसी का पर्सनल, एक फैमिली का। अगर फैमिली के साथ जाना है घूमने तो फैमिली के साथ, अगर नहीं जाना है तो अपना अकेला। 2 बटन होंगे, एक बटन दबाओ उड़ेगा, दूसरा बटन दबाओ नीचे। अलग अलग कलर के होंगे। एक विजुलाइजेशन दिया है बाबा ने, एक बताया ये था, इसको देखो, देखो मुरलियों में आता है देखो, देखो अर्थात मन की आंखों से देखो। तो वहां गीत संगीत होगा। यहाँ कौन सा गीत संगीत है? यहाँ मुरली का गीत संगीत है, यहाँ खुशी का गीत संगीत है, यहाँ रूहानी नशे का गीत संगीत है। उसके बाद में एच, हेल्थ। वहां पर स्वास्थ्य कोई खराब होगा, कंचन काया होगी, सतो प्रधान शरीर होगा। जब मरने का समय आएगा तब संकल्प आएगा कि मुझे अभी शरीर छोड़ना है, मैं दूसरा शरीर जाके लूंगा, ये शरीर जर्जर हो गया है। शमशान कैसे होगा वहां का? बिजली वाला जल्लाद आएगा, लेके जाएगा, रखेगा, बटन दबाया, शरीर खलास, कोई दुख नहीं किसी को, आराम से शरीर छोड़ेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा कहां जन्म ले रहा हूं। वहां संपूर्ण स्वस्थ होगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। यहां उसका आधार है अभी। आत्मा कितनी स्वस्थ है, आत्मा रुग्ण तो नहीं। शरीर को चलाने की कला यहां आई है कि बार 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 बीमार पड़ते रहते हैं, अर्थात ज्ञानी नहीं, अर्थात सर्वांगिक सुख स्वास्थ्य का यहां अनुभव तो वहां अनुभव, आय इनकम। वहां मजदूर होंगे क्या? इनकम कैसे होगी? इतना धन होगा, इतना धन, प्रचुर धन। द्वापर से जो महाराजे थे उनके पास इतना धन होता था, इतना धन होता था, तो वहां क्या होगा? फिर कैसा धन होगा? धन से लबालब भरी होगी ये धरती। तो यहां पर भी कमाई करनी है। कौन सी? संगम पर कौन सी कमाई करनी है? दुआओं की कमाई। किसने कितनी दुआएं कमाई है, पुण्य कर्मों की कमाई, वरदानों की कमाई, यहां जितनी होगी वहां कमाने की आवश्यकता नहीं होगी। सूक्ष्म ज्ञान की कमाई यहां जितनी होगी, स्थूल धन स्वतः आएगा। द्वापर से जन्म ही ऐसे घर में होगा कि जहां सब कुछ है, ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे पागल नहीं होना पड़ेगा। घर ऐसा ही घर में अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सब आएगा। धन चरणों में आकर गिरेगा द्वापर से, अंतिम जन्म तक भी। सूक्ष्म धन की कमाई यहां करनी है, सूक्ष्म दुआओं की कमाई यहां करनी है, तो सतयुग में भी फिर अथा सब कुछ होगा। उद्योग क्या होंगे? वहां पर भी उद्योग होंगे, खेती होगी, सब कुछ होगा, परंतु वहां पर परिश्रम, मेहनत, वो सब नहीं होगा, सहज होगा सब कुछ। उसके बाद में जीवन शैली, जे वहां की जीवन शैली सुबह से लेकर रात तक, सुबह देवता उठेंगे, कौन उठाएगा? पंछी के साथ उठते बराबर स्नान, बाथरूम कितना बड़ा होगा? किसी मुरली में बाबा ने कहा था, आबू इतना तो तुम्हारा महल होगा, तो ज्ञान सरोवर इतना बाथरूम तो होना चाहिए हर एक का। किस जल कैसे होगा जिसमें स्नान करेंगे? सुगंधित होगा वो, साबुन, डिटर्जेंट, शैंपू किसी की जरूरत नहीं है। कपड़े जो होंगे उन पर सिलवटे नहीं होगी, मखमली रेशम के कपड़े होंगे, उसको इस्त्री प्रेस कुछ भी करने के, उसमें कचरा भी नहीं लगेगा, कचरा है ही नहीं वहां। पत्थर जो है वो हीरे और सोने से बने हुए हैं, महल जो है वो सोने और हीरों के जड़ित है, तो वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, धूल ही नहीं होगी वहां पर। चप्पल पहनेंगे क्या लक्ष्मी नारायण? खड़ा लक्ष्मी नारायण मखमल के चप्पल होंगे उनके, वस्त्र सुंदर होंगे, सुशोभित होंगे। लक्ष्मी नारायण के तो एक दिन का एक वस्त्र, एक बार पहना वो वापस नहीं पहनेंगे, और हर ओकेजन के अलग अलग, सुबह उठने के अलग, घूमने के फिरने के अलग, हर चीज के बहुत सारे, इतनी सारी दासियां होगी कि हर एक सेवा के लिए एक 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 दासी। तो जीवन शैली में सुबह उठना, स्नान करना, फिर घूमने फिरने जाना, थोड़ा सा स्कूल में जाना, दोपहर में रेस्ट, भोजन, शाम को मनोरंजन के कार्यक्रम, और रात में जल्दी सो जाना। रात में प्रकाश कहां से होगा? हीरो का, हीरो से आकाश सजेगा, मोती से भरी जमी होगी, ऐसा वो युग आएगा। तो जीवन शैली, तो वहां की जीवन शैली इतनी व्यवस्थित है, यहां पर अपनी रूटीन को, दिनचर्या को इतना व्यवस्थित बताना है, बनाना है। जिनकी दिनचर्या बिखरी है, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई उसमें टाइम टेबल नहीं है, पहले अपना टाइम टेबल सेट करना है, कितने बजे उठना, कितने बजे मुरली, फिर भोजन, फिर अपने जो कार्य है, जो सेवाएं है, उसका टाइम टेबल, शाम का टाइम टेबल, सोने की विधि कैसी है, सब कुछ। देवताओं के मनोरंजन क्या होंगे? नाटक होंगे वहां पे, सिनेमा नहीं होगा वहां, नाटक होंगे। तो उसके बाद में के अर्थात किंग, किंग अर्थात नारायण वहां का राजा है। जो राजा के लक्षण है वो यहां हमें धारण करने हैं। एक राजा में क्या क्या लक्षण होता है, आप सबके लिए होमवर्क चिन्ह, क्या क्या क्वालिटीज होती है एक अच्छे राजा में, एक योग्य राजा में। एक अच्छा राजा होता है रात को निकलता है भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल देखने के लिए। सब ठीक तो है? ये द्वापर से सभी राजा जो बड़े बड़े राजा थे सब निकलते थे साधु का वेश धारण करके, छद्मवेश धारण करके घूमते थे। तो राजा प्रजापालक होता है, न्यायकारी होता है। एक राजा के गुण, अभी मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, गुलाम नहीं, मुझे वो राजा के गुण अपने अंदर धारण करने हैं। जब यहां राजा के गुण होंगे तब वहां जाकर राज्य कर पाएंगे। वो कंट्रोलिंग, वो रूलिंग पावर यहां धारण करनी है स्वयं के अंदर। उसके बाद में एल, एल फॉर लैंग्वेज। वहां पर कौन सी भाषा होगी? शुद्ध हिंदी होगी। बाबा ने कहा सबसे पहले तो जिनको हिंदी यहां नहीं आती वो हिंदी सीख ले, एक तो ये। दूसरा, बोल कैसे हो? मधुर हो। बोल कैसे हो? मीठे हो, सम्मान वाले हो, दूसरों को सम्मान देने वाले हो, गिराने वाले नहीं, इंसल्ट करने वाले नहीं, टॉन्ट वाले नहीं, कमेंट्स करने वाले नहीं, दूसरों को उसकी बुरी बुरा पास्ट रिमाइंड करने वाले नहीं, जलाने वाले नहीं, हर्ट करने वाले नहीं, इंसल्ट करने वाले नहीं, आलोचना करने वाले नहीं, समान वाले, श्रेष्ठ, योगयुक्त, कम मीठे, ऐसे बोल। तो वहां वैसी वो लैंग्वेज होगी। वहां एक शब्द से एक ही अर्थ होगा, जैसे यहां पर एक शब्द बोला तो उसके 10 अर्थ होते हैं, वहां एक शब्द हिंदी का उसका एक ही अर्थ होगा, और वो बहुत क्लिष्ट नहीं होगा, बहुत सिंपल उसका अर्थ होगा। लोह पथ गामिनी, क्या होता है ये? रेलवे। ऐसे कठिन शब्द नहीं होंगे, कोई सिंपल शब्द होंगे। तो लैंग्वेज केस चिनकारी, अलग अलग कुछ कुछ अव्यक्त संदेशों में। गुलजार दादी का एक अव्यक्त संदेश है जिसमें सत्यु की दुनिया का दिव्य दर्शन नाम है उस संदेश का, उसमें भी कुछ कुछ वर्णन है गुलजार दादी के संदेश में। तो ऐसी वहां की वो भाषा है, देव भाषा, देवनागरी लिपि है। तो यहां पर भी हमारी जो बोली है, जो बोल है, वो स्वर्णिम हो, गोल्डन हो। बाबा ने उस मुरली में कहा है वो गोल्डन एज है या डायमंड एज है। वहां कौन सा फल खाते हो? रसयुक्त फल खाते हो, वृक्ष का। यहाँ वृक्षपति द्वारा तुमको सर्व संबंधों के रस का फल, सर्व प्राप्तियों के रस का फल तुम्हें यहां मिलता है। वहां पर फल कैसे होंगे? बहुत मीठे, दबाओ थोड़ा सा और जैसे रस आ जाएगा, और एक ही झाड़ पे अलग अलग रस वाले भी फल होंगे। और वहां पर सब्जियां कैसी होगी? फल और फूल की सब्जियां बनेगी, पत्ते वाली सब्जियां नहीं बनेगी। वहां पर कुकिंग होगा क्या? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से बनाया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद में कहां थे हम? एल, एल अर्थात लैंग्वेज। उसके बाद में एम, एम अर्थात मैरिज। मैरिज कैसा होगा? स्वयंवर होगा, प्रेम विवाह नहीं होगा, लव मैरिज नहीं होगा, लव मैरिज नहीं होगा, स्वयंवर होगा। ये एक अंतर बताया है एक संदेश में। और वहां पर बहुत धूमधाम से शादियां चलेगी। कितना दिन? एक मास। दहेज में क्या दिया जाएगा? पशुधन, पशुधन, दास दासियां और बहुत सारे हीरे जवाहरात। उत्सव होगा। और जब किसी राजा के यहां शादी होगी तो पूरा राजधानी सज जाएगी, और किसी प्रजा की यहां शादी होगी तो वो पूरा इलाका सज जाएगा। ऐसी वहां की शादियां होगी। देवता है शादी क्यों करते हैं वैसे? देवान है मैं स्त्री मैं पुरुष, सोचना इसके विषय में। तो स्वयंवर होगा वहां पर। उसके बाद में एन, एन फॉर नो, नो वाइसेस, नो विकार, नो हिंसा, कोई विकार नहीं होगा। यहां पर शादी किसके साथ करनी है हमको? उसके साथ। अमृत वेला, एक बार शुभ मुहूर्त में, आज कहा है सुबह, अच्छा टाइम होता है, सुबह का असर सारे दिन भर होगा। सुबह अगर शादी कर लो तो फिर कुमार है यहां पर, किसी और को देखकर गड़बड़ नहीं होगी, हलचल नहीं आएगी, तो सुबह ही कर लेना शादी, ठीक है ना? तो नो मतलब नो की एक लिस्ट आप बना सकते हैं, सत्युग में क्या नहीं होगा, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल, मोबाइल, संवाद कैसा होगा? कम्युनिकेशन संकल्पों के द्वारा संवाद होगा। संकल्प किया और उसको पता चल गया, ऐसा संवाद होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद में ओ अर्थात ऑक्यूपेशन। वहां का ऑक्यूपेशन क्या होगा? एग्रीकल्चर। अच्छा, जो राजे महाराजे होंगे वो कुछ नहीं करेंगे, जो बाकी जो है प्रजा वो करेंगे, पर उनको भी दुख नहीं होगा, उनको भी कोई मेहनत नहीं होगी, वो सब करते हुए भी सब कुछ बनाएंगे तो सही। साइंस वहां रिफाइन हो जाएगी। एक मुरली में बाबा ने कहा साइंस अभी बच्चा है एकदम, 1990 की मुरली है, 90 में बाबा कह रहे हैं कि साइंस ने जो कुछ किया है बहुत ही छोटा है। ये वो सीख जाएंगे सतयुग तक और फिर वहां रिफाइंड हो जाएंगे, फिर वहां हाईटेक टेक्नोलॉजी होगी, हाईटेक म्यूजिक होगा, सारा सिस्टम उधर का एकदम रिफाइंड होगा। तो नो के बाद ऑक्यूपेशन। तो यहां पर हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? सेवा। सेवा आज का है, तुम रूहानी और जिस्मानी दोनों सोशल वर्कर हो, दिन रात जो सेवाओं में लगा दे अपने, ये हमारा धंधा है। विश्व कल्याण करना हमारा धंधा है, ये हमारा ऑक्यूपेशन है, संसार का कल्याण। ओ उसके बाद है पी प्रकृति। वहां प्रकृति कैसी होगी? सतो प्रधान। पांचों ही तत्व मजाल किसी की कि तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करे? सब कुछ सतो प्रधान होगा। कौन सा मौसम होगा? निरंतर वसंत ऋतु होगा, बहार होगी, सदा बहार, हवाएं, म्यूजिक बजेगा, हवाएं जब लहराएगी झाड़ों से पत्तों से, इतना सुंदर प्रकृति होगी। तो यहां पर हमें प्रकृति के साथ कुछ कुछ करना है। क्या क्या करेंगे? प्रकृति को सकाश सबसे लास्ट, पहले कुछ और बातें हैं। पहले प्रकृति का धन्यवाद, प्रकृति ने इतनी सतयुग से हमारी सेवा कर रही है, तब से अब तक हमने क्या किया? संहार। प्रकृति की सेवा करनी है, प्रकृति का धन्यवाद। प्रकृति को अब विनाश नहीं करना है, उसको कहीं पर भी दूषित नहीं करना है, स्वच्छ रखना है। चॉकलेट खाया और फेंक दिया, पॉलिथीन फेंक दिया, स्वच्छ रखना है प्रकृति को। तो प्रकृति की स्वच्छता, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति को धन्यवाद, प्रकृति की सेवा, प्रकृति को सकाश, प्रकृति का को सहयोग देना है, प्रकृति की मदद करनी है, प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति के कुछ तांडव नृत्य अगर करती है तो हम अप्रभावित रहना, ये प्रकृति जीत बनना है। तो प्रकृति पति बनना है, तो यहां जो प्रकृति पति है वो वहां प्रकृति पति होंगे। पी उसके बाद है क्यू क्वीन। वो जो लक्ष्मी है जिसकी मंदिरों में पूजा होती है धन के लिए, वो लक्ष्मी स्वयं वहां पर महारानी है, तो कैसा धन होगा? तो उतना धन ज्ञान का हमें अपने अंदर धारण करना है, लक्ष्मी जैसा इम्बाइब करना है, इतना वो धन अपने अंदर लेना है। उसके बाद में आर रिलेशनशिप। उधर संबंध कैसे होंगे? बहुत मीठे, आपसी तन मतभेद नहीं होंगे। तो वैसे ही इस ब्राह्मण परिवार में हमें भी, इस ब्राह्मण परिवार में या लौकिक परिवार में भी या विश्व के एक परिवार में भी, सारे संबंध हमारे कैसे हो? मधुर हो, बहुत मीठे हो। उसके बाद में एस अर्थात सब्जेक्ट प्रजा। वहां पर प्रजा चाहिए तो यहां क्या करना पड़ेगा? प्रजा बनानी पड़ेगी। इसके लिए दिन रात सेवा में लगना पड़ेगा, फिर से सूक्ष्म और मनसा सब प्रकार की यज्ञ सेवा, स्थूल सेवा, यज्ञ सेवा, स्थूल सब कुछ, हर प्रकार की सेवा, तन मन धन से सेवा। एक नहीं कर सके तो दूसरी करना, पर करना जरूर। उसके बाद में ताज, तख्त और तिलक वहां चाहिए। तो यहां क्या करना पड़ेगा? कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक। कौन सा तख्त? भगवान का दिल तख्त। लास्ट टाइम भी बताया था, भगवान का जो दिल तख्त है बहुत प्योर है और इसमें केवल प्योर आत्मा ही बैठ सकती है, वरदान था कभी, बाकी नहीं बैठ सकते। इतना स्वयं को स्वच्छ पवित्र करना है। उसके बाद में यू उत्सव, लास्ट पॉइंट उत्सव। हर पल वहां उत्सव होगा, इसके लिए ये ब्राह्मण जीवन भी क्या बन जाए? उत्सव बन जाए। यदि उत्सव नहीं है, दुख अशांति है, आज सुबह का वरदान तो अपवित्रता है, स्वतः पवित्रता होगी, स्वतः सुख शांति होगी यदि पवित्रता है तो, ऐसा रूहानी नशा प्राप्तियों का, आत्म अभिमानी होने का, आत्मा देखने का अपने अंदर चढ़ाना है तो जीवन क्या बन जाएगा? उत्साह, उत्सव बन जाएगा, निरंतर उत्सव, हर दिन उत्सव। देवता फेस्टिवल मनाएंगे? आज की मुरली में क्या था? नहीं, हर दिन ही फेस्टिवल है वहां पर। तो वो जो दुनिया है, इस दुनिया का निरंतर चिंतन करते रहना, देवताएं क्या खाते हैं, देवता क्या पहनते हैं, देवताएं कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, प्रकृति कैसी है, करेंसी कौन सी है, बार्टर सिस्टम, लेन देन कैसी होती है। जैसे मधुबन में डिपार्टमेंट से बने हुए अलग अलग, उसी तरह एक डिपार्टमेंट वाला ये थोड़ी सोचता है मैं मालिक हूं, पैसे लेता है कि दूसरे डिपार्टमेंट वाले से, वैसे वहां पर भी सिस्टम होगा कि बार्टर, ये लो वो दो, वहां उस तरह की करेंसी सिस्टम नहीं होगी, विनिमय प्रणाली। तो इस तरह का ये युग है, तो इस युग का निरंतर चिंतन करते रहने। बाबा ने कहा वर्षे को याद करो, राजधानी को याद करो, उस युग जहां जाना है उसको याद करो, इस दुनिया को भूलो, नए मकान को याद करो, पुराना मकान तो जाने वाला है। एक लास्ट बात, फिर क्लास पूरा करते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मुझे नर्क और स्वर्ग क्या है बताओ। तो गुरु ने उसे ध्यान साक्षात्कार कराया, दिखाया सबसे पहले नर्क। नर्क में एक बहुत सुंदर कमरा है जिसमें बहुत सुंदर मेज है, एक डाइनिंग टेबल जिसमें कुछ लोग बैठे हैं उधर से उधर से, पर बीच में जो खाना है, भोजन इतना सुंदर है, पर एक घड़े में है वो, और चम्मच जो है वो बहुत बड़े बड़े है, उसका जो दंडा है बहुत बड़ा बड़ा है। तो वो जो लोग है चम्मच में तो ला रहे, पर चम्मच इतना बड़ा है कि मुंह तक नहीं पहुंच रहा है, और सब दुखी है। यह है नर्क, परंतु वो भोजन बहुत स्वादिष्ट है, उसकी सुगंध आ रही है, और वहां लिखा है दिस इज हेल। दूसरी तरफ लिखा है दिस इज हेवन, पर उसमें भी वैसा ही है, वही डाइनिंग टेबल, वैसा ही एक घड़ा जिसमें खीर है या कुछ व्यंजन है, वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, पर वो बहुत अच्छे हैं, सब स्वस्थ है, वहां तो सब रोगी थे एकदम दुकड़े, और यहां सब अच्छे है, और यहां पर भी दंडा जो है चम्मच का बहुत बड़ा बड़ा है, पर यहां क्या कर रहे हैं दो, एक दूसरों को खिला रहे हैं। तो ये है स्वर्ग, जहां एक दूसरों की पालना करते हैं, जहां प्रेम का संबंध है, जहां मधुर संबंध है, जहां संबंधों में मधुरिमा है, ऐसी स्वीटनेस जहां पर है, वो स्वर्ग है। तो अपने आप से पूछना है मैं इस समय कहां हूं। एक तो वो स्वर्ग है जो आएगा, एक तो दूसरा स्वर्ग है जो अभी यहां हो सकता है, संगम का स्वर्ग, परमात्मा प्राप्तियों का स्वर्ग हृदय में हो। तो ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड वो था, ये भी है। तो कहां जाना है, उधर या इधर? ये दुनिया भी बहुत सुंदर है, बाबा की जो दुनिया है ये तो उससे भी बड़ा वंडर है। तो सभी फिर से अलर्ट होके बैठ जाएंगे। ओम शांति। गीत बजेगा, उस गीत को अनुभव करना है।
कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रों के महलों में होंगे, भले ही रों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। का मुरली बहा बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कहाँ सुनाए था मुरली बहा बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। में झुलाते हो पलकों पे अपने बिठाते हो ज्ञान रत्न से सजाते हो मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो पलकों पे अपने बिठाते हो ज्ञान रत्न से सजाते हो मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार थोर दुलार हो सतयुग में तेरा प्यार हो सतयुग में तेरा प्यार। बने हो तो बने रहना सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे भले हीरों के महलों में होंगे सुख के अति भरमार हो कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।